या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 452।
अली मदद, 18th of December 1999, my wife in Greenland, जमात के नाम टोरंटो। मोनिनो, आज हजर इमाम की शारीरिक बर्थडे है, यानी हम बर्थडे तो कह चुके हैं लेकिन आज मजलिस की खुशी है, इसके लिए आप सबको मुबारक है। आज आपके सामने इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं कि क्या हमको मजहब की जरूरत है, डू वी नीड रिलीजन। धर्म लाधो लाखे लाइफ के अंदर से, जिस लाइफ की कोई खास periodical value है नहीं, सौ वर्ष क्या है, कुछ भी नहीं. पहली जनवरी 1909 शुरू हुआ, ऐसा सोचता हूं कि सचमुच ये मतलब खत्म हो गया. टाइम रन फास्ट 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 फास्ट. 900 वर्ष पहले ये शम्स माँ बाप कहते हैं कि ऐसा वक्त आएगा, वर्ष जाते दस धड़ले दिन पानी नीले ले, दस दिन का एक बर्फ निकलेगा. यानी लाइफ इतनी फास्ट हो जाएगी कि हमको 12 महीने 10 दिन जैसे लगेंगे, और दिन इस तरह निकलेगा जैसे किसी ब्रिज के नीचे पानी चला गया, फ्लो हो गया. इतनी लाइफ फास्ट हो जाएगी. तो वेला कोटी, यहां वेला का मतलब मौत, तुम्हारा टाइम जल्दी खत्म हो गया, 10 बरस के 100 बरस. ये जो फूल है तुम्हारी जिंदगी का, यह कुमला गया, अब इसको जल्दी से वेला पोती पुनरालिंग से. तो अभी तक तुम जीते हो, मरे नहीं, तो जल्दी से ये जो फूल है ये अपने देव के मौला के कदमों में रख दो, अर्पण कर दो. यानी कि जब तक हम नहीं मरे, हमारे लिए चांस है कि हम अपनी जिंदगी की बुराइयों के ऊपर रिपेंट होके हम कहें या मौला सॉरी. जब जागे तब सवाल, मैंने आपको अर्ज किया कि आज मैं ये बोलना चाहता हूं, डू वी नीड रिलीजन, क्या सचमुच मजहब जरूरी है? क्योंकि दुनिया में इस वक्त मेजोरिटी उनकी है कि जो मजहब को मानते ही नहीं, या अगर मानते हैं तो फॉलो नहीं करते. कहने का मकसद यह है कि अगर मुझे कोई आदमी ये सवाल करे कि इस रिलीजन में सर, तो मैं उसको ये पूछूंगा, हैव यू गॉट ए सोल, क्या तुम्हारी रूह है? बहुत ही लोग कहेंगे कि यस, क्योंकि इससे कोई इंकार नहीं कर सकता. एक इंसान है, उसकी तीन एस्पेक्ट्स हैं, एक तो फिजिकल साइड है उसकी, एक उसकी मेंटल साइड है, एक स्पिरिचुअल है. और अगर कोई आदमी नास्तिक भी है, जो आदमी खुदा को बिलीव नहीं करता, एथिस्ट है, तो भी वो इस चीज को तो मानता है कि इंसान के अंदर कोई ऐसी स्पिरिट है या कोई ऐसी पावर है कि बियॉन्ड माइंड. तो हम अपने जीव के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी रूह के लिए क्या करते हैं? बदन के लिए ठंडी होती तो कपड़े पहनते हैं गर्म, सर्दी होती है तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, गर्मी में ऐसे कपड़े पहनते हैं, और अपना खाना पीना खाते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं. देयर आर सर्टेन नेसेसिटीज फॉर फिजिकल वेलबींग, और हर कोई करता है. माइंड के लिए भी हम लोग इस बात के लिए एजुकेशन लेते हैं, टू इंप्रूव माइंड. एजुकेशन के अलावा हमारी और भी बहुत सी चीजें हैं, सर्टन कल्चरल और सर्टन एथिकल चीजें हैं, सोशल चीजें हैं, जो हमारे माइंड के ऊपर असर करती हैं. एक एग्जांपल देता हूं, सब लोग जानते हैं, आज इस दुनिया के अंदर, इस प्रेजेंट सेंचुरी के अंदर, हमारे घरों के अंदर टीवी आ गया. ये एक ऐसी खराबी है, अच्छाई भी है इसमें. बाद में बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं. मुझे सबसे बड़ा जो शौक है, मैं न्यूज सुनना चाहता हूं ताकि दुनिया से वाकिफ प्यार बनू. लेकिन इसके अंदर बार तथा ऐसी बुराइयां आती हैं कि मैं 80 बरस का बूढ़ा भी इसको देख के शर्मा जाता. जब भी मैं टीवी के अंदर कुछ ऐसा प्रोग्राम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को डिस्कार्ड कर देता हूं. लेकिन मैं सोचता हूं सात आठ बरस का लड़का देख रहा है, बारह चौदह बरस का लड़का देख, लड़का की लड़की, उनके माइंड के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? ये जो कोरे माइंड हैं, जो अभी पैदा हुए हैं, बड़े हो रहे हैं, जिनके सामने साठ सत्तर अस्सी नब्बे बरस सौ बरस की जिंदगी पड़ी हुई है, उन लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए अगर ये उन लोगों की चाल है तो वहां तक वो पहुंच नहीं सकेंगे। याद रखो दिनदारो, मेरी जिंदगी बहुत से तजुर्बों और एक्सपीरियंसेस से भरी हुई है। मेरे मौला का करम है कि उसने मुझको मिशनरी बना दिया। मैं शुक्रगुजार हूं और मैं खुश भी हूं कि मुझे बहुत कुछ सीखना जानना मिला, और अब भी मैं सीख रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सी चीजें नहीं जानता। जितना जानता हूं उससे कई ज्यादा गुना मैं नहीं जानता, मगर जो जानता हूं उससे दिल को नाराजगी भी है और सुख भी है। 123 कंट्रीज दुनिया की मैंने देखी है, सारी दुनिया घुमा, अपनी कौम में भी नॉन इस्माइली कौम के अंदर भी, बादशाहों के साथ बैठकर मैं भी खाना खाया है और जमीन पे फकीरों के साथ बैठकर भी मैंने खाना खाया है। इंसानी जिंदगी के जिस कदर भी साइज हैं या एस्पेक्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रैक्टिकली उसके अंदर शामिल होकर मैंने देखा है। और मैंने देखा है कि जो पीरों ने कहा था वो सच कहा था कि आहिस्ता 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 दुनिया खराब हो रही है। गुनाह के बादल, गुनाह की बारिश, बदियां, बुराइयां, तकलीफें, मुसीबतें, आफतें जो रोज बरोज बढ़ती जाएंगी। गई सदी का रिकॉर्ड हमारे पास है, उसके पहली सदी का भी रिकॉर्ड है। 2000 बरस जो जीसस को हुए तब से लेकर अब तक हमारे पास रिकॉर्ड है, बल्कि मैं तो यह कहता हूं इससे भी पहले बुद्धा को 2500 बरस हुए और बुद्धा से पहले का रिकॉर्ड भी है। महाभारत के 7500 बरस हुए, महाभारत से लेकर आज तक का रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा है, इसके पहले के रिकॉर्ड भी हैं। मगर इन तमाम चीजों को जिस तरह एक डॉक्टर एक्सरे की फिल्म सामने रख के उसको स्टडी करता है, इस तरह का भी आप पुरानी हिस्ट्री को देखते और आज जो बन रहा है आप कभी इसको सोचो और देखो तो आपको डिफरेंस का पता लगेगा। ये पसली टूट गई है, पसली मीन्स रिब। डॉक्टर देख रहा है एक्सीडेंट हुआ और लंग्स उसके सामने है, हाँ लेफ्ट साइड की पसली रिब टूट गई है, उसमें दिखता है। ऐसा ही जो हिस्ट्री है वो एक्सरे की फिल्म है, और हिस्ट्री पढ़ो ताकि हमें पता लगे कि सिर्फ मैं नहीं, मेरी जिंदगी ही नहीं लेकिन मेरी औलाद की जिंदगी, उसको मैं कुछ कह सकूं कि ऐसा मत करता कि तुम्हारी पसली टूट जाए। मामला बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो बाज में नहीं कही जा सकती। प्राइवेटली आदमी यारों दोस्तों के पास बैठा है तो चलो अब बात बातें हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको इशारे से कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि आप सबको पता है, आप टीवी देखते हो, बदियां बुराइयां बढ़ गई हैं। पॉसिबल है आप में से किसी ने नोटिस किया होगा कि गए 10 बरस से दुनिया में धरती कम यानी अर्थ को एक्स बढ़ रहे हैं। कभी नोट किया दुनिया के अंदर लर्स बढ़ रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ सारी दुनिया में से कोई रिपोर्ट आती है। बांग्लादेश के अंदर हर साल 2-3 दफा आफत उतरती है, हजारों लाखों बेघर हो जाते हैं, सैकड़ों मर जाते हैं, ढोर डंगर मर जाते हैं, पानी आता है इस कदर के बाद छोड़ दो। इतना पानी होने पर भी ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं कि जहां पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि वो पानी गंदा है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। धरती कम बढ़ रहे हैं। पीरों ने हमको ऐसे बहुत से इशारे किए हैं, अगर के उनके दूसरे उसूलात भी होते हैं। मैं आपको एक बात साइंटिफिक चीज कहनी चाहता हूं कि किस तरह इंसान अपने ही हाथ से आहिस्ता आहिस्ता अपने पांव काट रहा है। आपके पास गाड़ी तो है, गैस डालते हो, हर रोज कोई आदमी 10 लीटर यूज करता है, कोई 20 लीटर, कोई 5 लीटर। आपने ये कभी सोचा कि सारी दुनिया के अंदर करोड़ों गाड़ियां हैं, मोर देन 250 मिलियन गाड़ियां और ट्रक्स हैं दुनिया के अंदर जो वर्किंग कर रहे हैं एट एनी टाइम। बहुत सी गाड़ियां रात को सो जाती हैं, दिन को काम करती हैं, हर दिन प्रेस में या अपने ऑफिस में जाते हो। कई ऐसे ट्रक हैं कि 24 घंटे काम करते हैं। 250 मिलियन कार, ट्रक्स, व्हीकल्स एट ए टाइम, एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट वो रोड के ऊपर है, और इन लोगों की हिसाब बिगड़ के मिलियंस बल्कि बिलियंस ऑफ गैलन हर रोज पेट्रोल जलता है। कहां से आता है? जमीन में से। जमीन में से, ये जमीन में से इतना पेट्रोल, अर्थ के अंदर बहुत सी जगहों के ऊपर कैविटीज हैं, वो खाली जगह गैस पेट्रोल से भरी हुई है, और ये आया किधर से? करोड़ों वर्षों से जानवर और इंसान मरते रहे। मानो के एक आदमी मर गया, उसको जला दिया गया, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे भी बहुत सी कि जो आदमी को दफन करते हैं, जानवर मर जाते हैं, दरख्त मर जाते हैं, तो ऑयल सीड और जानवर और इंसानों के अंदर जो ऑयल है, ये ऑयल चिपे 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 ड्रॉप बाई ड्रॉप जमीन उसको चूस रही है, और ये जो जमीन के अंदर कैविटीज हैं, खाली जगह, वहां वो भरते हैं। इस बात को लाखों बरस हो रहे हैं। अब हम हर रोज करोड़ों गैलन निकालते हैं, ये कैविटीज आस्ते आस्ते पेट्रोल से खाली हो रही हैं, और उसकी जगह हवा आती है या वो वैक्यूम हो जाती है। तो जब वो जगह खाली हो जाती है तो फिर ऊपर के बोझ से वो जमीन बैठ जाती है, गलती कर पाता। एक दिन आएगा 25 या 30 बरस के अंदर कि दुनिया में से पेट्रोल खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट 10 ईयर्स से पेट्रोल की अछत शुरू हो जाएगी, लेकिन 25 या 30 बरस से इन लोगों का ऐसा एस्टीमेट है। मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन पढ़ता रहता हूं, और पेड़ों के गिनानों में से बहुत से इशारे लेते हैं, जमीन बहुत सी जगहों के ऊपर जमीन बैठ जाएगी और धरती कम और भी बढ़ेंगे। फिर क्या होगा? हमारी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, एरोप्लेन खड़े हो जाएंगे, मगर उसके पहले ये लोग बड़े जो साइंटिस्ट हैं ना, वो बड़े चालाक हैं। वो अभी सोच रहे हैं कि कोई और रास्ता निकाला जाए कि हमारी ये आव जाव बंद ना होए, और जरूर निकालेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा मौका आएगा कि तकरीबन 80-100 बरस के अंदर इंसान हर रोज 25,000 to 30,000 आवर की स्पीड में उड़ सकेगा, 25,000 miles per hour उड़ सकेगा दुनिया के ऊपर, जो कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। हमने जो स्टार्स के अंदर, यानी कि मार्स में अभी अभी जो एक चीज फेल हो गई है, वो लैंडर नहीं कोई सिग्नल दे सका, इतनी दूर तक हमने उसको पहुंचाया, 5 बरस लगे और 150 मिलियन माइल्स आवे है, और वहां हमने अपना एक लैंडर भेज दिया इस स्पीड में 35,000 to 36,000 miles per hour की स्पीड से उड़े। यानी मैं आपको यह चिता बताना चाहता हूं कि हम इंसान अपने इस गलत इल्म के ऊपर, जिसको हम साइंस कहते हैं, और मजहब को छोड़ के इस पे जो चल रहे हैं, हम खुद एक्सीडेंट करने के ऊपर हैं, और ये एक्सीडेंट नेक्स्ट सेंचुरी के एंड में होगा। हमको पीर कहते हैं, और आप में से बहुत से लोग गिनान तो बोलते हैं, लेकिन गिनान बोलते ही बोलते आपने कभी यह गिनान पढ़ा कि झाड़े छीका बांध से दरख्त के ऊपर हम छीका बांधेंगे? छीका क्या है? एक बास्केट में खाने पीने की चीज रखेंगे और कोई डोरी के साथ उसको झाड़ पे बांधेंगे। क्यों? कि अगर जमीन पे रखेंगे तो इंसेक्ट्स हैं या जानवर खा ना जाए, आज हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर्स हैं। लेकिन फिर कहती है दरख्तों के ऊपर छीके बांधने पड़ेंगे तो रेफ्रिजरेटर क्या होंगे, नहीं होंगे, ऐसा वक्त आएगा। इमाम ने पीरों ने हमें आने वाले जमाने की सब बातें कही हैं। जो जो वक्त गुजरेगा दीनदारों, तैसे तैसे हमारी जिंदगी के दुख बढ़ते जाएंगे, फिक्र चिंता बढ़ती जाएगी, मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। और आज हमारी जमात के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज से 25 बरस पहले नहीं थे, लेकिन 25 बरस के अंदर जो हमने अफ्रीका, इंडिया और दूसरी जगहों के ऊपर से माइग्रेट करके हम इधर आए, यहां आके कुछ सुख भी मिले लेकिन दुख बढ़ते गए। शारीरिक सुख थोड़े से जरूर मिले हैं लेकिन मेंटल सुख बढ़ गए, मेंटल सुख नहीं बढ़े। जो उधर गरीब थे यहां के मालदार होते, लेकिन ऐसे बहुत से वहां मालदार थे, यहां जॉब करते हैं। जमात के अंदर बीमारी ज्यादा है, जमात के अंदर डिसऑर्डर मेंटल बढ़ रहे हैं, मैं तो घूमता रहता हूं ना। और ये चीजें क्यों हैं? क्योंकि हमारे दिल के अंदर जो एक ताकत और पावर और एनर्जी है हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। और वो एनर्जी है हमारे अंदर जिसको हम रूह कहते हैं, स्पिरिट। वो एनर्जी हमारे अंदर है मगर हमने उसको यूज नहीं किया कि ताकि हमें सुख मिले, शांति मिले। कई लोग मुझे मिलते हैं, कई लोग भी करते हैं, क्या है, बस जीव मुझाता है। मिशनरी बताओ मैं क्या करूं, तुम तस्वीर लो और मौला को याद करो, उस एनर्जी में प्लग डालो और उसके रिसेप्टिकल से ये एनर्जी हासिल करो। हमारे अंदर बदन है, इसको चलाने के लिए केमिकल एक्शंस हैं जो ब्रेन हमको देता है। हमारी सारी ह्यूमन लाइफ जो फिजिकल और मेंटल लाइफ है वो केमिकल है। जब भी किसी आदमी को कोई मेंटल ट्रबल होती है तो ये याद रखो कि उसकी सेरेब्रल फ्लूइड के अंदर हमारा जो ब्रेन है वो एक किस्म के फ्लूइड में तरता है, फ्लोट करता है। हमारा ब्रेन एक लिक्विड के ऊपर फ्लोट करता है। तो ये जो लिक्विड है इसको सेरेब्रल फ्लूइड कहते हैं। फिर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो यहां से शुरू होकर हमारी बैक तक नीचे उतरती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक लिक्विड है, स्पाइनल फ्लूइड। ये दो लिक्विड्स हमारे इधर कान के पास ऐसा हाथ लगा के देखो तो हड्डी है, इसके अंदर कैविटी में ये दो फ्लूइड्स मिलती हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ये एनर्जी देती है। अगर हमारे खाने पीने और डाइट के अंदर कुछ गलती हो जाए या आदत बिगड़ जाए, फॉर इंस्टेंस सिगरेट पीना शुरू कर दिया, ड्रग लेना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता बाज दफा जल्दी बाज दफा देर से जो केमिकल बैलेंस है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है। और केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से बगल बिगड़ जाता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है और आदमी कभी कभी पागल बन जाता है। हमारा मजहब इसलिए हमको जरूरी है, मैं इसका जवाब देता हूं, क्या हमको मजहब जरूरी है? हां बहुत जरूरी है। मजहब हमको शरीर मन और आत्मा किस तरह ठीक रहे वो हमको सिखाता है। मजहब हमको इस दुनिया में सुख शांति और संतोष सेटिस्फेक्शन देता है। मजहब हमको मौत का वक्त आसान कर देता है। मजहब हमको मौत के बाद भी हमारी मदद करता है, कामयाब करता है। मजहब बहुत जरूरी चीज है क्योंकि जो मजहब इतिहास की चीज है, मजहब ईमान की चीज है, मजहब बिलीफ की चीज है। मजहब जो है इंसान का बिलीफ मजबूत करता है, और वो ये है कि जिसने हमको बनाया है हम उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं। भला आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, मैं मर्सिडीज इसलिए याद करता हूँ कि खोजों को मर्सिडीज बहुत पसंद है, जरा से पैसे हो जाएंगे तो उधार भी लेके मर्सिडीज जरूर चलाएंगे। एक दफा बलन आगे कि जिस मुल्क के लोगों को पहनने का कपड़ा नहीं, खाने के लिए पेट में जगह पूरी करने के लिए अनाज नहीं, उस जगह हम मर्सिडीज गाड़ियों में, और मान लो कि भाई 5 मिलियन या 10 मिलियन के मकान में रहते हैं, तो उन लोगों की नजर हमारे ऊपर बद नजर होती है। बद नजरी खाली ये नहीं कि किसी खूबसूरत औरत को आदमी देख के तो बद नजरी करे, बद नजरी इसके ऊपर भी होती है कि एक पगला वगला अच्छा आदमी तंदुरुस्त हो गए, एक दुबला पतला आदमी उसको देख के बद नजरी करता है, यार देखो तो सही क्या मस्त आदमी है। बद नजरी बहुत सी किस्म की, तो इन तमाम चीजों को जो दुख है हमारी जिंदगी के अंदर, और ऐसे दुख के जिन दुखों की जरूरत नहीं, किसी को देख के जलना, किसी से हसद करना, ईर्ष्या करना, ये इंसान की जिंदगी के दुश्मन है और हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन या पीस ऑफ माइंड को बगाड़ देते हैं। इसलिए हमको मजहब की जरूरत है। मजहब कहता है तुम्हारे पेट में 3 रोटी की जगह है। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं कि तुम अगर 3 रोटी खा सकते हो तो 2 रोटियां खाओ, 1 रोटी छोड़ दो। हां तुम्हारी भूख अच्छी तरह से नहीं मिटी, लेकिन 1 रोटी छोड़ देने से ओवर ईटिंग भी नहीं होगी, अंडर ईटिंग होने की वजह से जल्दी हजम हो जाएगा और वो तुम्हारी बॉडी के लिए यूजफुल है। दूसरा, 1 रोटी जो बच गई वो किसी गरीब को काम आएगी। तो नबी कहते हैं कि फुल पेट मत भरो। हमारे दिनांक में हमको पीर कहते हैं कि पेट भरसो तो भारी फायसे, हादसे नहीं भरा बहुत पछताए। सो खाना पीना मॉडरेशन में रखो, कपड़े लगते मॉडरेशन में रखो। गए एक जगह 4-5 बजे परोड़िए चोर आए जमा खाने में। परोड़िए तो आदमी वैसे भी छोड़े होते हैं, और तक तो बंगड़ी वगैरह उतार के ले गए चले गए, लेकिन कभी जमात खाने में सुबह के वक्त अगर बंगड़ियां ना होती तो बच जाती ना। अभी परोड़िए 4 बजे बंगड़ियों पर नहीं, उस वक्त तो अंधेरा होता है, देखने वाला भी कोई नहीं। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। दुनिया के ऊपर हमारा देखाव और दुनिया की चीजों के ऊपर मोह ममता है, ये मैंने आपके पास शूट करने 78 में बनाया था। बहुत दफा मुझके मेरे दोस्त दिखे चुके यार छोड़ इस चीज को, मैं बोला क्यों, अभी 78 को 21 बरस हुए, 21 बरस का दोस्त जो फेंक दू, मरा नहीं है फटा नहीं है। मैंने अपनी आंख से देखा है इमाम सुल्तान मोहम्मद सदाकर हसनाबाद में आए, लोगों की मेहमानियां थी, इसके अंदर मंजी नथू वाली कंपनी अपने मुखी साहब की मेहमानी कंपनी थी, वो कंपनी का जो इस्माइली स्टाफ था उन्होंने मेहमानी रखी। 80-85 जने लड़के जवान बैठे थे, उसमें पीछे 22-24 बरस का लड़का, अच्छा खूबसूरत लड़का था, चाइना सिल्क का सूट पहने, 1941 की बात करता है। लड़ाई तो बरस सवा बरस हुआ था, चीजें बहुत महंगी हो गई। चाइना सिल्क लड़ाई से पहले 4 आने का याद था, 4 आना, मगर फिर उस वक्त जब की मैं बात करता हूँ 1941 की, तो यही 12 रुपये का याद हो गया, 12 रुपये 40 480% हो गया। तो वो खड़ा है 350 रुपये, 350 रुपये वो पहले लड़ाई से पहले वो 35 रुपये में बन जा गए। तुम्हारा पगार कितना है? खुदा 80 रुपया, 80 रुपये पगार, 350 रुपये का सूट मैंने चोरी करता है? नहीं नहीं, चारी चोरी नहीं करता, माता पिता के साथ रहता हूँ, पैसे बचा के मैंने ये किया। अगर माँ सुलता नशा फरमाते हैं, देखो कर के असर करो, पैसा फजूल मत डालो कहीं भी। बात कर रहे हैं मौला टाई को हटाया, कमीज के बटन खोले और ऐसा करके अंदर जो सिंगलेट है मौला की उसमें ऐसा, मैं इधर बैठा था लेफ्ट साइड में, मैं भी थोड़ा आगे आया कि देखूं भाई मौला क्या दिखाते हैं। तो मौला की जो सिंगलेट थी उसमें खड्डे पड़े हुए थे, पुरानी चूड़ी। मैं आपको सच कहता हूं कि आज किसी भी यहां बैठे हुए इस्माइली के पास ऐसी चीज हो तो वो उससे अपने बूट साफ करे शायद, मगर यूज तो नहीं करे। लेकिन वो जमीन आसमान का धनी कि जिसको पैसे की कमी भी नहीं है, अंदर उसने वो फटी हुई चीजें भेजी हुई है। देखो हम भी पुराना कपड़ा पहन लेता है, अंदर कोई नहीं देखता, पैसा बचाओ। मौलाना ईमान जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बात सुनाता है। मौलाना जाफर सादिक सिल्क का जफा पहन के आया करते थे और उस वक्त एक बहुत बड़ा सूफी था जिसको आज बहुत से सूफी बहुत बड़ा दर्जा देते हैं उसको, उस्मान थाउरी। वो इमाम का शागिर्द भी था। वो ऊपर एक फटा हुआ चोगा पहनता था, जब्बा पहनता था, फकीर की तरह लगे, और चोगा पहनते थे उसको ऐसा करके बंद करके रखते गले तक। तो एक दफा इमाम को उसने थोड़ा छेड़ा, कहते हैं मौला आपको ये सिल्क के कपड़े पहनते हैं जोगों पे क्या असर हुए। इमाम ने सिल्क का जब्बा उतार के देखा तो हुजूर ने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, आग नीची कर दी। मौला आगे बढ़े और उसके जब्बे को ऐसा किया तो अंदर सिल्क के कपड़े पहने हुए थे। ए सॉरी ये क्या है, माफी मांगी। मकसद कहने का मेरा क्या है कि हमारा जो दिल है वो अगर दुनिया की ऐश आराम बड़ाइयां वगैरह के ऊपर जो लग गया तो माइंड के ऊपर असर पड़ता है और माइंड हमारी आत्मा से एनर्जी नहीं लेता। हमारे अंदर ये जो एनर्जी है आत्मा की एनर्जी वो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। इबादत करने से, खुदा को याद करने से, मजहब के उसूलों पे अमल करने से और जो खुदा ने हिदायत की है उस पर अमल करने से हमारा जो माइंड है वो ऊपर से एनर्जी रिसीव करता है। रूहानी एनर्जी मिलने से माइंड पावरफुल होता है और ये एनर्जी जो माइंड को मिलती है वो थ्रू 72 ग्लैंड्स हमारे बदन में जो हैं वो सारे बदन को डिस्ट्रीब्यूट होती है। इबादत करने वाला और इबादत के उसूलों पे अमल करने वाला, खाने पीने रहने सहने अपनी आदतों को मजहब के हिसाब से चलाने से उसकी तंदुरुस्ती भी अच्छी रहती है, बीमारियां नहीं होती, उसको डायबिटीज नहीं होती, उसको हार्ट ट्रबल नहीं होती, क्योंकि उसने हमको बताया है हमारे मजहब ने कि 2/3 पेट भरो 1/3 खाली रखो। 100 बरस हुआ, कैलिफोर्निया में एक डॉक्टर था, डॉक्टर मैक्सिजन, उसने बहुत सी इस बात की रिसर्च की है, बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं। वो कहता है कि आदमी को 90% बीमारियां ओवर ईटिंग से होती हैं और ओवर ईटिंग करना मजहब के अगेंस्ट है, मजहब ने मना किया। कपड़ा लत्ता खाना पीना रहना सहना सॉरी हमारी रीत भात वगैरह हमको मजहब ने सिखाया है। तुमको किसी ने गाली दी मजहब पे तो छोड़ दो, रिटेलिएट ना करो। तुम्हारा किसी ने बुरा कर दिया बहुत गुस्सा आता है, देखो हो सकता है कि तुम्हारे कर्म का कारण है, तुमने किसी का बुरा किया आज तुम्हारा बुरा होगा, खुदा से माफी मांगो। नबी करीम محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر کوئی سختی آوے تو فرمایا پہلا کام یہ کرو کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو، استغفر اللہ ربی و توبہ الیہ، معاف کر دے میرے اللہ، تو میرا رب پالنے والا ہے، میں توبہ کرتا ہوں. ہر دکھ کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے. مذہب تو ہمیں بہت ضروری ہے. میاں بیوی کے جھگڑے ہماری جماعت میں بڑھ رہے ہیں، باپ بیٹے کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، بھائی بھائی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، جماعت اور لیڈرز کے درمیان بہت بڑا ڈسٹینس بڑھ رہا ہے. ہماری جدھر بھی میں نظر کرتا ہوں اپنی جماعت کی حالت بگڑ رہی ہے. کیوں بگڑ رہی ہے؟ مذہب کی خرابی کی وجہ سے. ہم جماعت خانے میں آتے ہیں لیکن کیا سچ مچ ہم جماعت خانے میں آئے ہیں کہ خالی ہم اپنی یہ لاش لے کے آئے ہیں؟ یہ لاش ہے. جس شریر کے اندر امام کی محبت نہیں، خدا کی قسم وہ لاش ہے. جماعت خانے کے اندر ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جو مذہب کے دشمن ہیں. جماعت خانے کے اندر کبھی کبھی چوہے نکلتے ہیں، کاکروچز نکلتے ہیں. تو جماعت خانے میں، صرف جماعت خانے میں آ جانے سے کچھ نہیں، من ہونا چاہیے. جماعت خانے آ رہے یہ سمجھ کے کہ میں مولا کے حضور میں جاتا ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ ادھر مولا بیٹھا ہے، یہ مولا کا گھر ہے. بھلے بھاڑے کے اوپر اس وقت جماعت خانہ ہے، کل ادھر اسکول ہوگی، لیکن ہم اس وقت جماعت نے ایک دربار بھرا ہے، مولا ادھر حاضر بیٹھا ہے. مکھی کمڑیا مکھیا نے کمڑیا نے مولا کی طرف سے ساری سیریمنیز پوری کرتے ہیں. اس وقت یہ مولا کا گھر ہے. گت جماعت کے اندر آسمان سے، کوسموس سے برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں. ان رحمتوں اور برکتوں کو فیل کرو. جماعت خانے آؤ، محبت سے آؤ، گناہ بخشے جاتے ہیں، آدمی کو پیس ملتی ہے. لیکن جماعت خانے کے اندر یوں ہی چلے آئے سمجھے سوچے کہ بغیر، میں نے دیکھا ہے کیونکہ میرا بیٹھنا ہے ان کے کمڑیا کی لائن میں، تو اچھی جماعت میرے سامنے ہوتی ہے. نارملی میں آ کے بند کر کے دعا بڑا کرتا ہوں، لیکن کبھی 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 جان بوجھ کے کھول دیتا ہوں. یہ دیکھنے کی مشنری ہوں نا، یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ سجدہ نہیں کرتے، کیوں بیٹھے ہوتے. اب وہ جان بوجھ کے نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بدن ادھر ہے اور روح ان کی باہر گھوم رہی ہے، کہیں نہ کہیں گھوم پھر رہے ہیں، خیال ادھر نہیں ہے. اور جب یہ پنجہ لینے کی بات ہے، وہ جلدی سے ادھر ادھر پنجہ لے لیا، دعا تو پڑی ہی نہیں. اور دل کے اندر ایسا ہے کہ میں جماعت کو نہیں گیا. اے مومنہ، دعا پڑھانے والا جب یہ دعا شروع کرے، آپ من میں اس کے ساتھ ساتھ بولو، آواز سے مت بولو، لیکن اس کے ساتھ دعا پڑھو. اگر اس نے کہا انت سلام و من کے سلام، تو آپ بھی انت سلام و من کے سلام. دعا پڑھنے والے کے ساتھ آپ دعا پڑھو اور اپنا خیال دعا میں لگاؤ. 10-20 دن کر کے دیکھو، آپ کو مزہ نہ آئے تو مجھے فون کرنا. جماعت خانے میں ہم آتے ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ہم شام کے وقت جماعت خانے میں آتے ہیں. اپنی اولاد کو چھوٹی عمر سے جماعت خانے کی محبت ڈالو. اے مومنوں، جو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ روز بروز، دن بہ دن، ایئر بائی ایئر، ڈے بائی ڈے دنیا خراب ہوتی جائے گی. اس ملک کے اندر، کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز کے اندر مذہب گھٹ رہا ہے، کرائمز بڑھ رہے ہیں، شیطان کا زور بڑھ رہا ہے. ہم کو امام ادھر لے کے آیا ہے، کوئی کارن ہے؟ میں نے ایک جگہ اس بات کا خلاصہ بھی کیا کہ کیا کارن ہے. میں آج یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا کارن ہے، لیکن کوئی وجہ ضرور ہے کہ امام ہم کو لانا ہے ایسے ملک کے اندر کہ جہاں کیا کہوں، زبان بند ہو گئی ہے میری. ایسی بدیاں برائیاں ہو رہی ہیں کہ سننے سے دل کانپ جاتا ہے، بدن کانپ جاتا ہے. سگا باپ اپنی بیٹی سے ریپ کرے. اس ملک کے میں ہم کو مولا لے کے آیا ہے. ماں اپنے بچے کو مار ڈالے، اس ملک کے اندر ہم کو لایا گیا. اور اس ملک میں لانے کا مقصد تو ہے، اس کے بغیر ایمان کوئی کام نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے. وہ مقصد 100 برس کے بعد پتہ لگے گا، لیکن بچنے کا ایک ہی رستہ ہے، جماعت خانہ پکڑو. صبح شام جماعت خانہ پکڑو. اپنی اولاد کو جماعت خانے کی محبت ڈالو اور اس کو سمجھاؤ کہ اس جگہ آنے سے پیس ملتی ہے, راحت ملتی ہے, سجیارہ ملتا ہے, سپورٹ ملتی ہے, اور ہم کو اندر سے کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ہمارے جو مسائل, ہماری جو پرابلمس ہوتی ہیں, ہمارے جو ایسے بہت سے کوئڑے ہیں, کوشچنز ہیں, آہستہ آہستہ ان کے لیے ہم کو اندر سے سولوشن ملتا ہے. اس لیے کہ جس پروردگار نے یہ ساری دنیا بنائی ہے, ہم کو بنایا ہے, وہ خدا, اس کا کوئی آکار نہیں, اس کی کوئی شکل نہیں, خدا کی کوئی فزیکل باڈی ہے ہی نہیں. خدا جو ہے وہ انرجی ہے, جس کو ہم نور کہتے ہیں, اور وہ انرجی صرف لائٹ کی طرح نہیں, جو کہ لائٹ کے اندر بھی کیسی پاور ہے, لائٹ الیکٹریسٹی سے ہم کو لائٹ ملتی ہے, ہیٹ ملتی ہے, ہم کو ریفریجریشن ملتی ہے, ٹھنڈی بھی ملتی ہے, گرمی بھی ملتی ہے. لائٹ کے کرنٹ کے اندر بہت سی چیزیں, ہاؤ یو یوز اٹ, اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اسی طرح سے خدا کا جو نور ہے, اس میں تمام چیزیں ہیں, عقل ہے, سمجھداری ہے, علم ہے, حلیمی ہے, مرسیفلنس ہے, زمین آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری اس لائٹ کے اندر موجود ہیں, اور وہ خدا کی لائٹ کی اسپارک ہمارے اندر ہے. ہم اس کو روح کہتے ہیں. اس روح سے فائدہ اٹھاؤ, روح کی انرجی مائنڈ اٹھا دے, اور مائنڈ سارے بدن کو ڈسٹریبیوٹ کرے, وہ آدمی اچھا رہتا ہے, کوئی بیماری نہیں. مذہب ہم کو ہر جگہ کام آتا ہے. میں ابھی آپ کو عرض کر رہا تھا, اور میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑا ایلیبوریٹ کر کے, مجھے بہت سے فون آتے رہتے ہیں ساری دنیا سے, اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ہماری میرڈ لائف خراب ہو رہی ہے. ہماری قوم کے اندر اس وقت ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان لافلی عورت مرد کے طور پہ بیٹھے ہیں, اس کو کہتے ہیں کامن لا میرج. ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں, سوری, مولا سے معافی مانگتا ہوں, آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں, وہ لیسبینز بھی ہیں, گے بھی ہیں. ہماری جماعت کے اندر ایسی برائیاں آ چکی ہیں, استغفر اللہ, اے مولا, اے مولا, تو میری جماعت کے اوپر رحم کر. ہماری جماعت میں بدیاں بڑھ رہی ہیں, اور یہ بدیاں بربادی کی نشانی ہے, دکھوں کی نشانی ہے. یہ بدیاں آفت لانے والی ہیں کہ جو ہماری جماعت میں چل رہی ہیں. ان بدیوں سے بچو, اپنے مذہب کے اوپر پکے رہو. ڈپریشن ہماری جماعت میں بڑھ رہی ہے, مائنڈ ڈپریس ہو گیا, اور ڈپریشن اس کو ہوتی ہے جس کا یقین بگڑ جاتا ہے. خدا کے اوپر یقین کرنے والے کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتی, کیونکہ وہ جانتا ہے میرا مولا بیٹھا ہے, اس کو کبھی فرسٹریشن نہیں ہوتی, اس کے دل کے اندر کبھی بھے ڈر خوف نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے رستے صاف ہوتے ہیں, کلین ہوتے ہیں. بدیاں کرنے سے ہمارا مغز, ہمارا برین, ہمارا مائنڈ, ہماری ہیبٹس, ہماری تھنکنگ خراب ہو جاتی ہے, اور یہ بہت پڑ گئی ہے. ہم ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دیتے ہیں. اسماعیلی نے اسماعیلی کو کوئی دکان کے بزنس بیچا ہے تو غلط پیپرز بنا کے بیچا ہے, اس کے اندر بعد میں اس کو پتا لگا کہ اس میں تو کچھ نہیں, دھوکہ ہو گیا. ایک اسماعیلی ایسا کام کرے, ہمارا کیریکٹر بگڑ گیا, تھنکنگ بگڑ گئی, عادتیں بگڑ گئی, ہمارا ہاؤ بہت بگڑ گیا, مال بہت آ گیا. مولانا شاہ کریم حضرت امام سلور جوبلی کا 83 کے اندر برس پورا ہوا, اور اس وقت لیڈرز کو مولا نے ایک ڈنر دیا. ایک بوڑھی بائی ہماری لیڈرز میں تھی, مولا کو کہتی ہے خدا بند 83 16 برس ہو گیا اس بات کو, مولا دعا کر کہ کینیڈا کی جماعت آباد ہو رہے. ماں باپ کہتے ہیں میری دعا ہے تم لوگ بہت مالدار بنو گے کینیڈا میں, کینیڈا میں بہت مالدار بنو گے. मेरे रूहानी बच्चे बहुत मानदार बनेंगे, लेकिन मुझे डर है मुझे भूल जाएंगे, और आज भूल रहे हैं हम लोग। अभी तो स्टार्टिंग है लेकिन हम भूल रहे हैं, हमारा ईमान बिगड़ रहा है, हमारी आदतें हैबिट्स बिगड़ रही हैं, हमारी सुख शांति बिगड़ रही है। मैंने आपको कहा कि हमारी मैरिज लाइफ खराब हो रही है, टॉलरेंस नहीं रहा। मजहब हमको सिखाता है कि धीरज रखो, आहिस्ता से बोलो, गाली गलौज करके झगड़ा करके मत बोलो, टॉलरेंस रखो, पीस रखो, एक दूसरे का ख्याल रखो, सेल्फिशपना छोड़ दो। झगड़ा कहाँ होता है? जहां सेल्फिशनेस होती है। मर्द समझता है मैं मर्द हूं, औरत समझती है मैं औरत हूं। आज औरतों का जमाना है, बिल्कुल है, औरतों का जमाना और भी आएगा। मैं आपको आज कहता हूँ 25-50 बरस के बाद मुझे याद करना, यानी ये इल्म मेरा नहीं है, मेरे मौला ने दिया हुआ है। आज जो मर्दों की पोजीशन अपर हैंड है ना, वो विद इन 25-50 ईयर औरतों का अपर हैंड होगा, और मर्द हाथ बांध के खड़े रहेंगे। औरतों को भले खुशी होती होगी इस बात में कि एक दिन हमारा आएगा, मगर याद रखो ये सब बदियों बुराइयों की निशानियां है, ये बर्बादियों की निशानियां है। बायोलॉजिकल जो ऑर्डर्स खुदा ताला ने बनाए हुए हैं उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है। औरतें इस वक्त बायोलॉजिकली मर्दों की तरह मर्दों जैसी बन रही हैं। औरतें रेसलिंग करती हैं, चड्डी पहन के रेसलिंग करती हैं, औरतें मसल्स बना रही हैं, औरतें प्लेन उड़ाती हैं, औरतें आर्मी के अंदर गई हैं। ये जो आजकल की हम फूड वगैरह खा रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सच है, आज से 5-6 वर्ष पहले भी मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा, और आज इस वक्त 3 महीने हुए कि गवर्नमेंट इंडिया अमेरिका और कनाडा के अंदर फार्मर्स जो हैं वो अपनी फार्म्स के अंदर प्रोड्यूस के लिए जो केमिकल यूज करते हैं, ये केमिकल्स हमारे अंदर डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, हॉर्मोन्स बदल रहे हैं, और इन हॉर्मोन्स के बदलने से हमारे अंदर बायोलॉजिकली फेरफार हो रहे हैं। जिसने कहा है 12 बरस का लड़का बच्चा पैदा करेगा, 9 बरस की लड़की प्रेग्नेंट होगी। पॉवर्टी का जो टाइम है वो 12 साल की एज के नजदीक है, लेकिन अभी पॉवर्टी नीचे उतर रही है, 9 बरस की लड़की पॉवर्टी में आ जाएगी। 16-18 बरस की उम्र का जो लड़का आज है वो 12 बरस की उम्र के अंदर शादी करेगा, बच्चा पैदा होगा, ये हॉर्मोन्स की वजह से। और ये तमाम चीजें हम जो फूड खाते हैं उसकी वजह से, और इन तमाम फूड्स के अलावा हमारी और बहुत सी किस्म की मेंटल आदतें और थिंकिंग जो है, ये तमाम चीजें हमें बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं। बचने का एक ही रास्ता है, मजहब को पकड़ो, मजहब को पकड़ो। और हमारे इमामों के फरमानों के अंदर, इनानों के अंदर हमें कहा गया कि सिंपल सादा खाना खाओ, तीखा मिर्च मसाला इसको छोड़ दो, फ्रूट खाओ, वो भी केमिकली एक्शन में आए हैं। लेकिन फ्रूट के अंदर जो केमिकल यूज होता है और फ्रूट के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वो एक गाय बकरी वगैरह के चिकन के अंदर डिफरेंट काइंड के हैं। ये जो मांस है, गोश्त जो है, चिकन या बीफ या मटन वगैरह, इसके अंदर हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा खराब करने की केमिकल्स हैं। गोश्त छोड़ दो, वेजिटेबल ज्यादा खाओ, वेजिटेबल अभी भी सेफ है, और अभी तो हमको ऑर्गेनिकली ग्रोन चीजें मिल भी जाती हैं। खाने का ख्याल रखो, अपनी थिंकिंग का ख्याल रखो, और इबादत करो तो इबादत करने से खुदा के साथ हमारी एनर्जी का कनेक्शन होता है। इबादत करने से, मौला को याद करने से दिल को ढारस और तस्कीन मिलती है। तो मेरा आज का सब्जेक्ट ये था कि डू वी नीड रिलीजन? आई टेल यू यस, वेरी बैडली, वी नीड इट वेरी बैडली, वी नीड इट रियली। हमारा हर सांस जो है वो खुदा की याद में होना चाहिए कि उसकी दी हुई एनर्जी से जो हम थिंक करेंगे तो वी विल बी थिंकिंग एंड डिसाइडिंग राइटली, हमारा फैसला ठीक होगा, और हम टेम्पटेशन से बचेंगे, और इस दुनिया में टेम्पटेशन बढ़ती है, बढ़ती रहेगी। टेम्पटेड न बनो, और टेम्पटेड कौन नहीं होता? रूहानी आदमी जो है, रिलीजियस लोग हैं, वो टेम्पटेड नहीं होते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, जगह परेब नहीं करते, बदनजरी नहीं करते, किसी का माल नहीं खाते, चीटिंग नहीं करते। उसके अंदर जो हैबिट्स होती है ना, हैबिट्स कम फ्रॉम माइंड, क्योंकि हाथ पांव के अंदर तो अकल नहीं है। हमारे हाथ पांव और हमारे जो लिम्स हैं वो अंडर कंट्रोल ऑफ हमारे माइंड है थ्रू ब्रेन पावर। इसलिए इबादत करने की बहुत जरूरी है, रोज जमात करने की हाजिरी बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी एक फूल की तरह है कि थोड़े टाइम में वो कमला जाएगी। और इसलिए फिर कहते हैं कि मौत आ गए उसके पहले अपनी जिंदगी को मौला के चरण में रख दो, सुखी आबाद बनो हमेशा, मौला की नेक को मैंने पूरी करे, हकीकती समझ दे दें, बदियों बुराइयों से बचा लें, गुनाहों से बचा लें, नाफरमानी से बचा लें, मौला अपनी छत्र छाया में रखे, अपनी रहमत से हमारी अक्ल को, हमारी समझ को अपनी फरमान बरदारी पे चलाए। मौला आपको, आपकी आल औलाद को दिनों दुनिया के सुख दे दे, दिनों दुनिया की नियामतें दे दे, हकीकती समझ दे दे, फरमान बरदार बना दे, दूसरों की सुख रीति बना दे। मौला आपकी हर नेक उम्मीद को पूरा करे, दुखों से, तकलीफों से और कलयुग के असर से हमेशा बचा दे। शुक्रिया बाद।